एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ग्रंथसार में आप सभी का स्वागत है। एकत्र फाउंडेशन की इस पेशकश में हम विश्व साहित्य की कुछ चुनिंदा अहम कालजयी कृतियों की दुनिया में उतरते हैं, उनके सार को समझने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ हैं रविंद्रनाथ टैगोर का वो महाकाव्यात्मक उपन्यास गोरा।
जी, और गोरा ये सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, ये तो अपने आप में जैसे एक पूरा युग है। टैगोर हम सब जानते हैं, भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव। उनकी प्रतिभा के कितने ही आयाम थे, कवि, कथाकार, नाटककार, संगीतकार, चित्रकार और हाँ, दार्शनिक, शिक्षाविद। उनकी छाप तो आधुनिक भारत पर बहुत गहरी है, अमिट है।
बिल्कुल, और गोरा हमें ले चलता है उस दौर में, मतलब 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी की शुरुआत के कलकत्ता में। वो वक्त जब बंगाल अंग्रेजी हुकूमत के साये में तो था, लेकिन अंदर ही अंदर एक जबरदस्त सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक उथल पुथल मची हुई थी।
हाँ बिल्कुल, एक तरफ वो स्वदेशी आंदोलन की लहर थी,
सही,
तो दूसरी तरफ हिंदू समाज के अंदर ही देखिए तो रूढ़िवादी परंपराएं और ब्रह्म समाज के जो सुधारवादी विचार थे उनके बीच का टकराव,
हाँ,
वो जैसे चरम पर था।
हाँ, तो हमारी आज की ये बातचीत इसी जटिल पृष्ठभूमि में रचे गए गोरा की कहानी, उसके किरदारों के मन की परतों और अहम सवाल जैसे पहचान, राष्ट्रवाद, धर्म, इन्हीं के इर्द गिर्द घूमने वाली है।
सही कहा, और इस उपन्यास का जो केंद्रीय विचार है ना, वो आज भी उतना ही मतलब सोचने पर मजबूर करता है। कहानी का जो दिल है वो है गौरमोहन, जिसे सब उसके गोरे रंग की वजह से गोरा कहते हैं।
नाम में ही एक प्रतीक है ना?
बिल्कुल, गोरा बहुत पढ़ा लिखा है, तेज दिमाग वाला, जोशीला नौजवान है, लेकिन साथ ही वो कह सकते हैं कट्टर हिंदू राष्ट्रवादी भी है। पूरी शिद्दत से वो पारंपरिक हिंदू धर्म की रक्षा करना चाहता है।
लेकिन यही कहानी में एक बहुत बड़ी विडंबना छिपी है, एक ऐसा राज जो गोरा खुद नहीं जानता। असल में वो जन्म से हिंदू या ब्राह्मण है ही नहीं।
जी, वो तो 1857 के सिपाही विद्रोह में मारे गए एक आयरिश जोड़े का अनाथ बच्चा है, जिसे एक हिंदू ब्राह्मण परिवार ने पाला पोसा है।
और यहीं से उपन्यास का वो बुनियादी सवाल उठता है जो मतलब पाठक को एकदम पकड़ लेता है, सच्चा भारतीय होने का मतलब क्या है आखिर?
हाँ, क्या हमारी पहचान हमारे जन्म, हमारी जाति, हमारे मजहब से तय होती है, या फिर ये कोई गहरी, सबको साथ लेकर चलने वाली रूहानी और तहजीबी चेतना है?
उपन्यास हमें एक ऐसी दुनिया दिखाता है जहां ये सवाल किरदारों की जिंदगी में, उनके रिश्तों में, उनकी बहसों में बार बार सामने आते हैं।
खास तौर पर जब गोरा और उसका दोस्त बिनोय परेश बाबू के उस प्रगतिशील ब्रह्म समाजी परिवार के संपर्क में आते हैं, जहां सुचरिता और ललिता जैसी आजाद ख्याल लड़कियां हैं, बस यहीं से विचारों और जज्बातों का टकराव शुरू हो जाता है।
हाँ, और टैगोर ने इन किरदारों के जरिए उस दौर के बंगाल की आत्मा को जैसे पकड़ लिया है। गोरा को ही लें, वो सिर्फ एक किरदार नहीं बल्कि उस दौर की एक सोच, एक पूरी विचारधारा का प्रतीक है।
हाँ, वो हिंदू पुनरुत्थानवादी विचार, मतलब वो सोच जो मानती थी कि भारत की महानता उसकी प्राचीन हिंदू परंपराओं में है और उन्हें पश्चिमी असर से बचाकर फिर से स्थापित करना जरूरी है।
बिल्कुल, इसीलिए गोरा हर उस चीज का विरोध करता है जिसे वो बाहरी या अशुद्ध मानता है, उसकी जिद, उसका जुनून, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे वो दीवार से सर टकरा रहा हो।
लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उसका सबसे करीबी दोस्त बिनोय इस कट्टरता से बिल्कुल अलग है। बिनोय भी गोरा का पक्का दोस्त है, उसकी इज्जत भी करता है, पर उसका दिल और दिमाग ज्यादा खुला हुआ है।
हाँ, वो जैसे दो दुनियाओं के बीच फंसा हुआ सा लगता है।
बिल्कुल, एक तरफ गोरा की सख्त नियमों में बंधी दुनिया, दूसरी तरफ परेश बाबू के घर का वो खुलापन जहां विचारों की आजादी है। बिनोय की अपनी एक कश्मकश चलती रहती है, वो गोरा के असर से बाहर निकलकर अपनी राह तलाशने की कोशिश में है।
और जिस दुनिया की तरफ बिनोय खिंच रहा है वहां है सुचरिता, परेश बाबू की गोदली हुई बेटी, ऐसा कुछ मानते हैं।
सुचरिता उपन्यास की बौद्धिक और कह सकते हैं रूहानी धुरी जैसी है। जी, बहुत गहरी सोच वाली है वो, हमेशा सच की तलाश में। गोरा का देश प्रेम उसका तेज उसे खींचता तो है, पर गोरा की कट्टरता, उसकी असहिष्णुता उसे उतनी ही मतलब परेशान भी करती है।
हाँ, उसकी अपनी एक यात्रा है, एक ऐसी सच्ची आस्था की खोज जो किसी पंथ या समाज की सीमाओं में बंधी न हो। उसके और गोरा के बीच जो लंबी वैचारिक बहसें होती हैं, वो तो उपन्यास की जान है।
और फिर है सुचरिता की बहन लोलिता, जो परेश बाबू की अपनी बेटी बताई जाती हैं। लोलिता तो जैसे आने वाले जमाने की हिंदुस्तानी औरत की पहली झलक है, एकदम तेज तरार, बेबाक, आजाद।
सही।
वो समाज के बनाए नियमों को तोड़ने से जरा भी नहीं हिचकिचती। याद है वो घटना जब वो बिनॉय के साथ अकेले, मतलब बिना किसी महिला साथी या गार्डियन के, स्टीमर से सफर पर निकल पड़ती है?
हाँ, उस जमाने के हिसाब से तो ये बहुत बड़ी बात थी, एक तरह की बगावत।
बिल्कुल, ये उसकी हिम्मत और आजादी का प्रतीक बन जाता है।
और इन नौजवानों की उथल पुथल के बीच एक शांत केंद्र की तरह हैं परेश बाबू, ब्रह्म समाज को मानने वाले, शीतल, ज्ञानी। वो उपन्यास के नैतिक कंपास जैसे हैं।
हाँ, कट्टरता से कोसों दूर, सहनशील, तर्क को मानने वाले और बाहरी रस्मों रिवाजों से ज्यादा अंदर की आवाज, जमीर पर जोर देने वाले। शायद टैगोर ने उनमें अपने आदर्श इंसान की छवि देखी होगी।
हो सकता है। वो किसी पर अपने विचार थोपते नहीं, बल्कि सबको अपना रास्ता खुद खोजने की प्रेरणा देते हैं।
और एक किरदार है जिसे भूलना नामुमकिन है, आनंदमयी, गोरा की पालक माँ। एक पारंपरिक हिंदू घर की महिला होकर भी उनका दिल करुणा और प्रेम से भरा है, जो जात पात, धर्म मजहब की सारी दीवारें जैसे लांघ जाता है।
हाँ, और वो अकेली हैं जो शुरू से गोरा के जन्म का राज जानती हैं।
जी, जेदील उनका प्यार गोरा के लिए बिल्कुल वैसा ही है, बिना किसी शर्त के। उनका किरदार जैसे ये कहता है कि इंसानियत किसी भी पहचान से कहीं ज्यादा बड़ी है। वो तो प्रेम का जीता जागता स्वरूप है। तो कहानी आगे बढ़ती है। गोरा और बिनॉय परेश बाबू के घर आने जाने लगते हैं, और जैसा कि अंदाजा था, विचारों की टकराहट तो शुरू से ही जाहिर हो जाती है। गोरा की लंबी गहरी बहसें होती हैं सुचरिता से। वो उसे अपने विचारों के दायरे में लाना चाहता है, पर कहीं ना कहीं खुद सुचरिता की समझदारी, उसकी ईमानदारी और सच को जानने की उसकी लगन से प्रभावित भी होने लगता है।
अच्छा।
और उधर बिनॉय, वो धीरे धीरे ब्रह्म समाज के विचारों और खास तौर पर ललिता की तरफ खींचता चला जाता है। नतीजा,
दोनों गहरे दोस्तों गोरा और बिनॉय के बीच एक अनदेखी दीवार खड़ी होने लगती है, तनाव बढ़ने लगता है।
बिल्कुल।
और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ किरदारों का आपसी टकराव नहीं है, ये उस वक्त के बंगाल में चल रही दो बड़ी विचारधाराओं की लड़ाई का अक्स है।
हाँ, एक तरफ वो कट्टर हिंदू राष्ट्रवाद
और दूसरी तरफ ब्रह्म समाज का सुधारवाद। टैगोर बड़ी खूबसूरती से निजी रिश्तों के धागों में इस बड़े सामाजिक और वैचारिक संघर्ष को बुनते हैं। गोरा जब सुचरिता को जीतने की कोशिश करता है, तो असल में वो एक पूरी सोच को हराना चाहता है, लेकिन इस कोशिश में वो खुद उलझता जाता है।
कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब गोरा असली भारत को खोजने, उसे महसूस करने के लिए गांव की तरफ निकल पड़ता है। उसे लगता है शहरों में तो सब मिलावट हो गई है, असली हिंदू परंपरा तो गांवों में ही मिलेगी।
एक आदर्शवादी सोच।
जी, पर वहां जाकर उसका सामना होता है कड़वी सच्चाई से। जात पात का गहरा भेदभाव, अंधविश्वास, भयानक गरीबी, जिस सुनहरे अतीत की वो कल्पना करता था, जमीनी हकीकत उससे बिल्कुल अलग थी, बहुत ज्यादा तकलीफ दे थी।
तो ये अनुभव उसकी कट्टर आस्था की जड़ों को हिला देता होगा।
हाँ, बिल्कुल। और इसी यात्रा में एक घटना होती है। वो कुछ मुसलमान गांव वालों को एक हिंदू जमींदार और पुलिस के जुल्म से बचाने की कोशिश करता है और गिरफ्तार हो जाता है। यहाँ उसका मजहब नहीं, उसकी इंसानियत सामने आती है।
ये गांव का अनुभव गोरा के लिए एक आईना बन जाता है। कैसे जिंदगी के तजुर्बे आपकी बनी बनाई सोच को तोड़ सकते हैं, ये उसका सटीक उदाहरण है। वो जिस असली भारत की तलाश में था, वो उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा पेचीदा, बटा हुआ और दर्द में था।
सही कहा।
इस अनुभव ने उसके मन में वो सवाल पैदा किए होंगे जिनका जवाब उसकी पुरानी कट्टर सोच के पास था ही नहीं। ये उसके अंदर आने वाले बड़े तूफान की आहट थी एक तरह से।
और उधर शहर में लोलिता और बिनॉय की वो मशहूर स्टीमर यात्रा होती है। जैसा मैंने कहा, लोलिता का अकेले बिनॉय के साथ जाना समाज की नजरों में एक स्कैंडल बन जाता है।
हाँ, हंगामा खड़ा हो गया होगा।
जी, बिनॉय पर दबाव पड़ता है कि वो या तो ब्रह्म समाज को चुने या अपने पुराने दोस्तों को, और वो लोलिता का साथ देने का फैसला करता है।
अच्छा, ये एक तरह से गोरा के दबदबे से उसकी आजादी का ऐलान भी था फिर तो।
हाँ, कह सकते हैं। और लोलिता का ये कदम उसकी हिम्मत और अपनी शर्तों पर जीने की जिद को दिखाता है।
बिल्कुल। लोलिता का ये काम और बिनॉय का फैसला, उपन्यास में आजादी के थीम को बहुत ताकत से सामने लाता है। ये सिर्फ समाज के नियमों से आजादी नहीं है, बल्कि अपने जमीर की आवाज सुनने और प्यार के लिए खड़े होने की आजादी भी है। ये दिखाता है कि कैसे एक इंसान का निजी फैसला भी बड़े सामाजिक बदलावों का हिस्सा बन सकता है।
और फिर आता है कहानी का वो चरम बिंदु, वो लम्हा जो गोरा की दुनिया को हमेशा के लिए बदल देता है। गोरा के पालक पिता कृष्ण दयाल अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं।
हाँ।
मरते मरते वो एक ऐसा राज खोलते हैं जिससे उन्होंने जिंदगी भर छुपाए रखा था। और आनंदमयी गोरा की माँ भारी मन से उस राज पर मोहर लगा देती हैं कि गोरा हिंदू नहीं है, ब्राह्मण नहीं है।
ओह।
वो तो 1857 के गदर में मारे गए एक अंग्रेज आयरिश जोड़े की अनाथ औलाद है, जिसे कृष्ण दयाल और आनंदमयी ने अपनी औलाद की तरह पाला था।
सोचिए ये खबर गोरा पर कैसे बिजली बनकर गिरी होगी। जिस पहचान पर, जिस हिंदुत्व पर, जिस ब्राह्मण होने के गौरव पर उसका पूरा वजूद टिका था, वो एक पल में रेत की दीवार की तरह ढह गया।
जी।
और इसमें छुपी विडंबना देखिए, जो इंसान खुद को भारतीयता और हिंदू शुद्धता का सबसे बड़ा पैरोकार समझता था, जो दूसरों को उनकी अशुद्धता के लिए कोसता था, वो खुद जन्म से बाहरी म्लेच्छ निकला। उसके सारे तर्क, सारे विश्वास, सारी नफरतें जैसे अचानक बेमानी हो गई।
यही आनंदमय के वो शब्द याद आते हैं जो वो गोरा से कहती हैं, मेरे लिए तुम कभी हिंदू या गैर हिंदू, ब्राह्मण या गैर ब्राह्मण नहीं थे, तुम बस मेरे बेटे थे। कितना बड़ा सच छुपा है इन सीधे साधे शब्दों में।
हाँ, कि माँ का प्यार पहचान के इन सारे खांचों से ऊपर होता है।
गोरा अंदर तक टूट जाता है, उसे लगता है जैसे उसकी जमीन पैरों के नीचे से खिसक गए हो। लेकिन इस गहरी टूटन के बाद एक अजीब सी चीज होती है, उसे एक जबरदस्त आजादी का एहसास होता है।
आजादी टूटने के बाद?
हाँ, वो सारे बंधन जिनसे वो अब तक जकड़ा हुआ था, जाति का, धर्म का, नस्ल का, वो सब एक झटके में टूट जाते हैं।
जी।
उसे ज्ञान होता है असली पहचान इन छोटी छोटी दीवारों में कैद नहीं है, वो तो सारी इंसानियत को अपने अंदर समेट लेने में है।
और इसी आत्मज्ञान, इसी मुक्ति के बाद गोरा वो ऐलान करता है जो इस उपन्यास का निचोड़ है, टैगोर का संदेश है।
जी, वो कहता है, आज मैं भारतीय हूँ, मुझ में किसी समाज का, हिंदू का, मुसलमान का, क्रिस्तान का कोई विरोध नहीं है। आज भारतवर्ष की प्रत्येक जाति मेरी जाति है, सबके घर का अन्न मेरा अन्न है।
क्या बात है। ये सिर्फ गोरा का बदलना नहीं है, ये टैगोर की भारत की कल्पना है, एक ऐसा भारत जो धर्म और जाति की संकरी गलियों से निकलकर एक खुली मानवीय पहचान को गले लगाए।
बिल्कुल। और इसी आजादी के बाद ही उसका और सुचरिता का रिश्ता भी, वो जो विचारों की लड़ाई थी उससे ऊपर उठकर एक सच्चे इंसानी स्तर पर मुमकिन हो पाता है।
तो अगर हम इस उपन्यास के मुख्य धागों को, मतलब थीम्स को पकड़ने की कोशिश करें, तो सबसे पहले तो यही पहचान का सवाल आता है, पहचान क्या है?
हाँ, क्या वो है जो हमें जन्म से मिलती है, या वो है जो हम अपने अनुभवों, अपने जुड़ावों से बनाते हैं? गोरा की पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि पहचान कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि माननीय चेतना का विस्तार है।
फिर सवाल आता है राष्ट्रवाद का। गोरा की यात्रा संकीर्ण, दूसरों को बाहर रखने वाले राष्ट्रवाद पर एक सवालिया निशान है, और एक ऐसे भारत की हिमायत करती है जो पूरी मानवता से जुड़ा हो।
और जाहिर है रूढ़ीवाद और सुधारवाद की वो बहस जिसमें टैगोर दोनों की कमियों को दिखाते हुए परेश बाबू के जरिए एक बीच का, समझदारी का रास्ता सुझाते हैं।
हाँ, बिल्कुल। और इन बड़े सवालों के साथ साथ प्यार और समझ का थीम भी बहुत अहम है।
जी, आनंदमयी का बिना शर्त वाला प्यार इसका सबसे बड़ा सबूत है। आजादी का विचार देश की, समाज की और व्यक्ति की हर तरफ फैला हुआ है, और लोलिता का किरदार इसकी मिसाल है।
और हाँ, नारी शक्ति को कैसे भूल सकते हैं। सुचरिता और लोलिता दोनों ही अपने वक्त से बहुत आगे की औरतें हैं, जो अपने दिमाग और दिल की आजादी के लिए लड़ती हैं।
सही।
टैगोर के लिखने की शैली की बात करें तो वो एक सर्वज्ञ कथावाचक की तरह कहानी कहते हैं, मतलब जो हमें किरदारों के मन के अंदर तक ले जाता है। ये विचारों का उपन्यास है जहां किरदारों के आपसी संवाद और उनकी अंदरूनी कश्मकश कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मनोवैज्ञानिक गहराई बहुत है।
हाँ, और प्रतीकों का इस्तेमाल भी कमाल का है, जैसे खुद गोरा का नाम और रंग, आनंदमय की रसोई जो सबके लिए खुली है, या गंगा नदी जो भारत की आत्मा का प्रतीक है, और सबसे बढ़कर वो विडंबना, आयरनी का इस्तेमाल, खासकर गोरा की पहचान को लेकर, जो कहानी को एक अलग ही परत देता है।
सही कहा। इस उपन्यास का असर सिर्फ दिमागी नहीं, जज्बाती भी है। पढ़ते हुए आप सिर्फ बहसों में नहीं खोते बल्कि किरदारों के साथ सफर करते हैं। गोरा की जिद से लेकर उसकी मुक्ति तक, सुचरिता की तलाश, बिनोई की दुविधा।
जी, ये किताब आपको मजबूर करती है कि आप अपनी पहचान, अपने पूर्वाग्रहों के बारे में सोचें। ये आपको निश्चितता के आरामदेह दायरे से निकालकर एक ज्यादा बड़ी, ज्यादा जटिल समझ की तरफ ले जाती है।
और अंत में गोरा की ये पूरी यात्रा हमें पहचान की सीमाओं और परिभाषाओं से परे जाकर एक व्यापक इंसानियत को अपनाने की जरूरत के बारे में क्या सिखाती है।
और आज की दुनिया में जब हम अक्सर उन्हीं पुराने बंटवारों, धर्म, राष्ट्र, समुदाय में उलझे नजर आते हैं, तब सरहदों के पार जाकर एक साझी इंसानियत की ये तलाश, ये इतनी जरूरी क्यों लगती है?
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।